नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले तो खेद है इस विलंब के लिए, जो कि कई सारे तकनीकी कारणों के एक साथ पैदा हो जाने के कारण हुआ। कोई बात नहीं, अब हम बात करेंगे डॉक्टर ऐमान अल जवाहिरी की। कुछ लोग उसको ईमान अल जवाहिरी भी कहते हैं, और ईमान का मतलब आप जानते ही हैं। वो अल जवाहिरी का जो ईमान था वो एक ड्रोन ने आज ख़त्म कर दिया। खास बात यह है उस ड्रोन की कि उसने इस डॉक्टर को कैसे टारगेट किया, इसके बारे में पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। क्योंकि जब 15 अगस्त 2021 को कब्ज़ा किया था अफगानिस्तान के ऊपर और काबुल के ऊपर तालिबान ने, तब उस समय ये बात बताई गई थी कि भाई तालिबान और अलकायदा में तो झगड़े हो रहे हैं, आपस में इनमें बहुत झगड़े हैं और अलकायदा जो है वो तालिबान को हटाना चाहता है और तालिबान जो है वो अलकायदा को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन असलियत में ये बात पता चली बाद में कि इस जवाहिरी को वहाँ पर सेफ हाउस तालिबान ने ही दिया। ये उसी तरह की बात हो रही है जिस तरह से तालिबान जो है वो पाकिस्तान को अश्योरेंस देता रहा और बाद में पाकिस्तान के साथ ही धोखा कर गया। तो अब यहाँ पर आपस में धोखे का खेल ऐसा चला कि अब चर्चा ये है कि इस ईमान अल जवाहिरी का जो खेल है वो संभवतः आईएसआई ने ख़त्म करवाया। क्यों? ईमान अल जवाहिरी जो है अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ आकर रुका है और इसको सेफ हाउस दिया गया तालिबान की ओर से। काबुल में रह रहा था और काबुल में भी उस क्षेत्र में रह रहा था जहां पहले अमेरिकन दूतावास की बिल्डिंग हुआ करती थी, बिल्कुल उसे 2 मिनट की वॉक पे, और पूरा फोर्टिफाइड हाउस था। लेकिन फिर भी उसकी जो वेयर अबाउट्स थी वो लीक हो गई। निश्चित रूप से तालिबान ने तो लीक की नहीं, लीक तो आईएसआई ने पाकिस्तान ने ही की। और क्यों की? प्रश्न यह है कि क्यों की? प्रश्न यह है कि आईएमएफ का लोन इतने दिन तक पास होने के बाद भी क्यों रुका हुआ था? आईएमएफ का लोन रुका हुआ था इसलिए कि जिससे कि आईएसआई को प्रेशराइज किया जा सके कि वो जो अपने एसेट्स हैं और वो एसेट्स ईमान अल जवाहिरी जैसे, जो ईमान अल जवाहिरी ओसामा बिन लादेन का दायां हाथ था, 9/11 की प्लानिंग में शामिल था और ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से अमेरिका उसको ढूंढ रहा था और वो अलकायदा का चीफ भी हो गया था। तो इतनी महत्वपूर्ण एसेट को सिर्फ $1 बिलियन में अमेरिका ने खरीद लिया। ज़्यादा से ज़्यादा इनामो इकराम करेंगे तो इस $1 बिलियन को $1.5 बिलियन कर देंगे। लेकिन बात तो यही है कि वो जो ड्रोन जिसने वो हेलफायर R9X मिसाइल चलाई, जिसने कि जिसमें कि ये कैपेबिलिटी है कि बिना ब्लास्ट हुए उसने ईमान अल जवाहिरी को मार दिया और एक भी और सिंगल भी सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई, तालिबान के मुँह पर तमाचा। लेकिन पाकिस्तान जो है उसने इस ड्रोन को चलाने के लिए बेस भी दे रखा है। यानी आप ये देखिए कि पाकिस्तान से ही यह ड्रोन चला, क्योंकि ड्रोन की इतनी रेंज नहीं होती है। ड्रोन जो है वो आप यदि सोचे कि पर्शियन गल्फ से यानी फारस की खाड़ी से लॉन्च किया जा सकता है तो भी संभव नहीं है, क्योंकि फारस की खाड़ी से यदि आप किसी ड्रोन को लॉन्च करेंगे तो उसको या तो ईरानियन एयर स्पेस के ऊपर से जाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि ईरान और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो जग जाहिर है, वो तो बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल सख्त खिलाफ, यानी कि एक तरफ से दुश्मन है। तो फिर अगर वहाँ से लॉन्च करेंगे तो पाकिस्तान एयर स्पेस से लॉन्च करना होगा, तो उसको फिर सी ऑफ ओमान से लॉन्च करना होगा, वो उतनी दूर जा नहीं सकता। तो फिर कहाँ से लॉन्च हुआ? ये पेशावर के पास से एक बेस से लॉन्च हुआ, और पेशावर के पास से एक बेस से लॉन्च हो के और अमेरिका के जो एंटी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो यूज करते हुए और काबुल में मार के वापस पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस दी, पाकिस्तान ने ही अलकायदा की और तालिबान के जो सीक्रेट्स हैं वो अमेरिका के साथ शेयर किए। अमेरिका ने अल जवाहिरी को मार गिराया। अब प्रश्न ये है कि पाकिस्तान यदि इस तरह से अपने एसेट्स को बेच सकता है तो फिर वो हाफिज सईद को खरीदने में हमें क्या प्रॉब्लम है? कि हमें हाफिज सईद को भी खरीद लेना चाहिए, हाफिज सईद को खरीद के उसको उड़ा दे, ओ पाकिस्तान जो है उसको भी अच्छा एक मौका मिल जाएगा, उसको पास एक मौका आ जाएगा कि वो एंटी इंडिया रेंट अपनी जितनी भी है वो सब कर सकेगा, एंटी इंडिया एक अपना वहां पर चला के नरेटिव, और अपने जो लोग जो हैं उसके परेशान हो रहे हैं मुद्रा स्फीति से, इन्फ्लेशन से, करेंसी से, महंगाई से, एक तरह से इकोनॉमी के कोलैप्स से वो परेशान हो रहे हैं, उनके पास एक बहुत बढ़िया चीज़ आ जाएगी कि देखो भाई हम भारत ने जो है वो हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमारी एयर स्पेस वायलेट कर दी, जैसे कि वो ब्रह्मोस वाले मामले में हुआ था, एक एक्सीडेंटल ब्रह्मोस चल गई और ब्रह्मोस चल के जो है वहाँ पहुँच गई। तो वो मुझे लगता है हाफिज सईद को भी इसी तरह से निकाल लेना चाहिए, आखिरकार है तो वो पाकिस्तान आर्मी की ही कस्टडी में। तो भाई पाकिस्तान वालों जो आप हमसे सुन रहे हो, वो $1 बिलियन हम भी दे देंगे अगर आप हमें हाफिज सईद सईद दे दो तो, और ये आप सौदा जो है बहुत आसानी से कर सकते हो। वैसे भी कतर के माध्यम से आपके बहुत सारे रिलेशन सही हैं, आप कतर वालों को कहो कतर वाले ये सौदा तुम्हारे लिए कर देंगे, कतर वालों से सौदा करके और हाफिज अली को एक दिन, हाफिज सईद को एक दिन बैठा दो आंगन में, खुले आंगन में या खुले मैदान में, कोई यहाँ बैठ भाई थोड़ी हवा खा, ठंडी हवा खा, और ठंडी हवा खा के और इन्फॉर्म कर दो भारत को, वो अपना कोई मिसाइल छोड़ देगा, नहीं तो कोई ड्रोन छोड़ देगा, वो करके उसको निपटा देगा, और यहाँ भी बल्ले बल्ले, आपके यहाँ भी बल्ले बल्ले, क्योंकि आपकी जनता का ध्यान जो है वो पूरा का पूरा भारत की ओर चला जाएगा। देखिए मैं बहुत अच्छा फार्मूला बता रहा हूँ आपको, इतना अच्छा फार्मूला आपको किसी ने कभी बताया नहीं होगा। फिर दूसरा फार्मूला और बताता हूँ आपको, और यदि और कुछ नहीं हो तो आप अमेरिका से ही रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अमेरिका तुम हमारा सिस्टम जो है इंडिया से फिक्स करा दो, जिस तरह से ईमान अल जवाहिरी को हमने मरवाया उसी तरह से हम हाफिज सईद को भी मरवा देंगे। लेकिन अब आगे क्या होगा, अब मज़े तो आएंगे हमको, हम कई दिनों से आपसे कह रहे हैं ना कि अगर आपका जो दुश्मन है वो खुद सुइसाइड करने पर आमादा हो तो बिल्कुल किसी तरह का कोई इंटरप्शन, कोई डिस्ट्रैक्शन मत कीजिए, उसको अपने आप सुइसाइड करने दीजिए, उसकी तरफ देखिए भी मत, बल्कि जब आप उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं तो वो और भी अधिक सुइसाइड प्रोन होगा। अब इन्होंने ये अपना जो $1.5 बिलियन लेना था IMF से, उसके चक्कर में ये सारे कंसेशन अमेरिका को कर तो दिए। जो बाइडन की हालत ख़राब है इस समय, जो बाइडन की रेटिंग्स जो हैं वो आज तक के हिस्टोरिकल कहते हैं, पिछले 70 साल में किसी भी सिटिंग प्रेसिडेंट की अपने दूसरे साल में इतनी कम रेटिंग नहीं रही जितनी जो बाइडन की है, 38% से भी कम है। हर जगह पे उसको मार खानी पड़ रही है, यूक्रेन के चक्कर में है, उसने पूरे यूरोप की ऐसी तैसी करा दी, अमरीका की ऐसी तैसी करा दी, $1 पर गैलन वाला जो वहाँ पर गैस थी, जो हमारा पेट्रोल है उसको गैस कहते हैं, वो वहाँ पर अब $5 में मिल रही है। इन्फ्लेशन जो है वो 9% के ऊपर चल रहा है, मतलब भारत से भी ज़्यादा वहाँ के, बल्कि भारत की तो बहुत ही साउंड है अर्थव्यवस्था इस समय। भारत में रिसेशन की जो वार्निंग है या जो रिसेशन का ख़तरा है वो 0% बताते हैं, और अमेरिका में तो ये 30-40% के आसपास पहुँच गया। तो जो बाइडन के लिए भी अपना एक स्कोरिंग बढ़िया पॉइंट हो गया। अब जो बाइडन भारत से समझौता कर ले वो तो करेगा, लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? अब पाकिस्तान और तालिबान में एक और जबरदस्त एक जंग की बुनियाद बन गई है। अब तालिबान जो है वो किस ढंग से जंग करता है आप भी जानते हैं, इस वक्त उसने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, बलूचिस्तान में, पश्तूनिस्तान में, और पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं जो हैं लगभग आधी जम्मू कश्मीर से उधर डाइवर्ट कर रखी। भारत के पास ये भी मौका है भारत के पास ये भी मौका है, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि जब दुश्मन जो है वो अपने स्वयं के ही दलदल में फंस रहा हो तो आपको उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए, आप बिल्कुल आप शांत बैठे रहें, वो अपने आप अपना क्रियाक्रम कर लेगा, वो अपना क्रियाक्रम करता चलेगा और आप जो हैं वो यहाँ पर बैठ के तमाशा देखिए। जो लोग बलूचिस्तान में उठ खड़े हुए हैं, जो लोग इस वक्त पश्तूनिस्तान में उठ खड़े हुए हैं, जो लोग अब डूरंड लाइन को क्रॉस करके और सिंध दरियाए सिंध के पास पहुंचकर और अपना पूरा का पूरा जो इलाका है अटक तक अफगानिस्तान वाले जो पश्तून हैं वो क्लेम करना चाहते हैं, उनके साथ डिप्लोमेटिक डायलॉग बनाए रखिए, डिप्लोमेटिक डायलॉग बनाए रखिए और समय समय पर जो वहाँ पर जो भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हो रहे हैं उनके ऊपर आवाज़ बिल्कुल बुलंद रखिए। किसी भी तरह का कोई भी मानवाधिकार का उल्लंघन, चाहे वो पीओके में हो रहा हो, गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहा हो, पश्तूनिस्तान में हो रहा हो, पश्तूनिस्तान जिसको ये खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, या बलूचिस्तान में हो रहा हो या सिंध में हो रहा हो, भारत को लगातार इसको डिप्लोमेटिकली विश्व के पटल पर उठाते रहना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ वैसे ही लोगों ने अब डायरेक्ट रिलेशनशिप और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्थापित कर लिए हैं, भारत ने भी कर लिए, पाकिस्तान जो है वो बाईपास हो चुका है, पाकिस्तान की जो सामरिक एक महत्ता थी, जो उसका एक सामरिक महत्व था वो अब समाप्त हो चुका है, अफगानिस्तान तक जाने के लिए भारत स्वयं ईरान के माध्यम से, ईरान के जरिए एक अपना उसने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बना लिया है। इन सब होने से पाकिस्तान जो है वो अब भयंकर चक्कर में आने वाला है, इकोनॉमिक कोलैप्स उसका लगभग कंप्लीट है, इसलिए भारत अब आगे बढ़ो और पाकिस्तान को और आइसोलेट करो, बिल्कुल आइसोलेट कर दो। अब तो तालिबान भी उधर से इनके ऊपर हमला करेगा, जब तालिबान उधर से हमला करेगा और लगता है कि मुझे और जोर शोर से हमला करेगा, अलकायदा वाले भी इनके ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने बेचा है ईमान अल जवाहिरी को, पाकिस्तान ने अपना ईमान बेचा है, ईमान अल जवाहिरी को मारने के लिए पाकिस्तान ने अपना ईमान बेचा है, और ईमान किसके साथ बेचा है, जो कहते हैं हमारे ईमान वाले भाई जो हैं वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो ये जो अमेरिका है वो शैतान है, तो शैतान के हाथों पाकिस्तान ने अपना ईमान बेचा है, और जिसने अपना ईमान शैतान के हाथों बेच दिया हो उसको किसी भी तरह से तालिबान माफ नहीं करेगा। समझ गए ना पाकिस्तान वालों, समझ गए ना हाफिज सईद वालों, अब लो मजे, बैठो पीछे बैठो आराम से कुर्सी पर, पॉपकॉर्न खाओ और एंटरटेनमेंट ले।